नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार। आज इतिहास नवम पेपर के अंतर्गत अरब क्षेत्र एवं अरब राष्ट्रीयता नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। अरब क्षेत्र, मुहम्मद के अनुयायी शस्त्रधरों ने 7वीं-8वीं सदी में जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उसके अवशेष स्वरूप अरब भाषा एवं संस्कृति एशिया के विशाल अरब प्रायद्वीप के अतिरिक्त अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एवं मिस्र में सुरक्षित रही तथा ये प्रदेश कालक्रम में अरब प्रदेश कहलाए। परंतु मुख्यतः अरब प्रायद्वीप ही अरब राष्ट्रीयता का केंद्र बना रहा। पूरब में ईरान की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, उत्तर में भूमध्य सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर द्वारा घिरा हुआ यह प्रदेश एक ओर दक्षिण की मरुभूमि से बंजर तो दूसरी ओर उत्तर से सीरिया की उर्वर भूमि से समृद्धशाली बना हुआ है। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया की सभ्यता का केंद्र भी इसी क्षेत्र में दजला एवं फुरात की घाटी में विकसित हुआ था। इस प्रदेश में ऑटोमन साम्राज्य का पंजा सन 1517 ईस्वी में सलीम प्रथम के मिस्र विजय के साथ पड़ा। इस विजय द्वारा अब्बासी खलीफाओं का अंत हो गया एवं अरब प्रदेश के ऑटोमन साम्राज्य के प्रभाव में आ गया। सलीम प्रथम के उत्तराधिकारी गौरवशाली सुलेमान 1520 से 1567 ईस्वी ने अल्जीरिया से लेकर ईरान की खाड़ी एवं अलेप्पो से लेकर हिंद महासागर तक के अरब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उसमें प्रसिद्ध मुस्लिम तीर्थस्थान मक्का, मदीना एवं जेरूसलम तथा प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र दमिश्क एवं बगदाद शामिल थे। इस प्रकार 16वीं सदी में विशाल अरब क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य द्वारा उदरस्थ कर लिए गए। समयानुसार अरबों ने साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किए एवं आंशिक सफलताएं भी प्राप्त की। फिर भी 18वीं सदी के अंत तक अरबों पर तुर्क शिकंजा कायम रहा तथा अरब राष्ट्रीयता सुषुप्त बनी रही। अरब राष्ट्रीयता का विकास, राइज ऑफ अरेबियन नेशनलिज्म। अरब पुनर्जागरण का प्रथम अध्याय 18वीं सदी में वहाबी आंदोलन से आरंभ हुआ। इस्लाम में सुधार लाने के हेतु यह आंदोलन मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने आरंभ किया एवं नज्द के सऊद परिवार ने उसे सहयोग दिया। 1972 ईस्वी में अब्दुल वहाब की मृत्यु हो गई, परंतु वहाबी आंदोलन ने काफी जोर पकड़ लिया था तथा उससे आसपास के क्षेत्रों पर विजय करना आरंभ कर दिया। 18वीं सदी के अंत तक मक्का एवं मदीना पर वहाबियों ने कब्जा कर लिया एवं सीरिया तथा इराक पर भी आक्रमण किया। अब तक ऑटोमन साम्राज्य रुग्ण हो गया था, परंतु सुल्तान के हुक्म से मिस्र के प्रबल दावेदार मुहम्मद अली ने 1811 ईस्वी में आंदोलन को कुचलने का बीड़ा उठाया। सप्तवर्षीय अनवरत संग्राम उपरांत 1818 ईस्वी में वहाबी फौजों ने हथियार डाल दिए, परंतु आंदोलन मृत नहीं हुआ। दूसरी ओर मुहम्मद अली ने अरब असंतोष एवं सुल्तान की निर्बलता का फायदा उठाकर नए अरब साम्राज्य की स्थापना की योजना बनाई एवं 1833 ईस्वी में सीरिया को हस्तगत कर लिया। अरबों ने उसे त्राता कहकर पुकारा और उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। परंतु 1840 ईस्वी के लंदन सम्मेलन ने इस पर तुषारापात कर दिया और मुहम्मद अली को सीरिया छोड़ना पड़ा। परंतु इस अल्पकाल में ही अरब राष्ट्रीयता के बीज अंकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित हुए। ईसाई मिशनरियों ने सीरिया शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर जागरण लाने पर जोर दिया। सीरिया अरब राष्ट्रीयता का उद्गम स्थान बना। एल स्मिथ, डैनियल ब्लिस आदि मिशनरियों एवं नासिफ यजजी और बुस्तनी आदि अरब लेखकों के प्रयास से शिक्षा में काफ़ी प्रगति हुई। 1847 ईस्वी में प्रथम कला एवं विज्ञान समाज सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, और 1850 ईस्वी में ओरिएंटल सोसाइटी की स्थापना हुई। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक विकास था तथा इन्हें मिशनरियों ने स्थापित किया था, परंतु 1857 ईस्वी में सीरियन वैज्ञानिक समाज सीरियन साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसमें अरबों ने पूर्ण सहयोग दिया। 1862 ईस्वी में इसे सरकारी मान्यता प्राप्त हो गई तथा इसकी सदस्यता में काफ़ी वृद्धि हुई। इस समाज में शनह शनह अरब स्वतंत्रता की चर्चा होने लगी तथा सर्वप्रथम इब्राहिम ने एक छंद द्वारा इस भावना का प्रसार किया। तत्पश्चात 1875 ईस्वी में 5 युवकों ने मिलकर एक गुप्त दल का संगठन किया एवं गुमनाम ढंग से अरब राष्ट्रीयता का प्रचार कार्य आरंभ किया। इनकी शाखाएं सीरिया के बाहर खुल गईं। सितंबर 1880 ईस्वी में इन्होंने जनता के सम्मुख 4 मांगें रखी। पहला, सीरिया की आज़ादी। दूसरा, अरबी भाषा की मान्यता। तीसरा, विचारों की आज़ादी। एवं चौथा, अरब सैनिकों को सिर्फ स्थानीय उपयोग। इस तरह इस गुप्त दल ने अरब स्वतंत्रता का सर्वप्रथम उन्मुक्त आवाहन किया। सुल्तान अब्दुल हमीद की दमनकारी नीति के कारण यह शीघ्र ही भंग हो गया, परंतु इसने जो दीपशिखा प्रज्वलित की उसका उत्थान पुनः 1908 ईस्वी के क्रांति के पश्चात हुआ। तरुण तुर्क और अरब, यंग टर्क्स एंड अरब। 1908 ईस्वी की क्रांति से सुल्तान को निरंकुशता का अंत एवं अरबों के बीच नवीन उत्साह का संचार हुआ। तरुण तुर्कों ने अखिल ओटोमनवाद एवं अखिल इस्लामियत की नीति अपनाई तथा आरंभ में सर्वजाति समन्वय पर जोर दिया। अरबों के भ्रातृत्व संबंध स्थापित करने के लिए ऑटोमन अरब भ्रातृत्व संघ की स्थापना की गई एवं मक्का के शरीफ के वंशज हुसैन को मक्का के अमीर का पद प्रदान किया गया। परंतु अरबों को शीघ्र ही घोर निराशा का सामना करना पड़ा। दिसंबर में जब नई संसद का चुनाव हुआ तो 150 तुर्क सदस्यों के मुकाबले 60 अरब सदस्य ही निर्वाचित हो सके, जबकि आबादी अरबों की ही अधिक थी। तरुण तुर्कों ने केंद्रीकरण पर जोर दिया एवं नूतन निरंकुशता को जन्म दिया। शीघ्र ही ऑटोमन अरब भ्रातृत्व संघ का भी अंत कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अरबों ने अनेक गुप्त एवं प्रकट संस्थाएं कायम कर ली। इसमें कुस्तुनतुनिया की साहित्यिक गोष्ठी, कैरो ऑटोमन विकेंद्रीकरण दल प्रसिद्ध थे। इनका प्रमुख उद्देश्य अरबों के अधिकारों को प्रचार करना था तथा इनकी शाखाएं सीरिया एवं इराक के प्रमुख शहरों में फैल गई। इसके अतिरिक्त 2 गुप्त संस्थाएं अल कुहतानिया एवं अल फतात थीं। अल कुहतानिया की स्थापना 1909 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया में हुई तथा इसका नेता अजील अल मसूरी नामक एक सैनिक ऑफिसर था। अल फतात की स्थापना 1911 ईस्वी में पेरिस में हुई। अल फतात ने पूर्ण अरबी स्वतंत्रता पर जोर दिया। तत्पश्चात जून 1913 ईस्वी में पेरिस में अरब सम्मेलन में अरबी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में विकेंद्रीकरण एवं अरबी भाषा की मान्यता पर जोर दिया तथा आरंभ में तुर्क शासकों ने इन मांगों को आंशिक स्वीकृति भी प्रदान की तथा अगस्त में सुल्तान ने एक हुक्म जारी किया, परंतु अरबों को लाभ नहीं हुआ तथा उनके प्रयत्न निष्फल गए। 1914 ईस्वी में अल अहद नामक एक गुप्त संस्था का उद्घाटन किया गया, जिसमें ऑटोमन सेना के अरब अधिकारी सदस्य बने। इस तरह प्रथम महायुद्ध के पहले अरबी साम्राज्य के प्रति भीषण असंतोष था तथा अल फतात एवं अल अहद के सदस्य चारों तरफ भरे थे। अब तक मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्रिपोली एवं मिस्र तथा अरब प्रायद्वीप में भी दक्षिण में नजद में इब्न सऊद ने अपना राज्य बढ़ाया एवं 1913 ईस्वी में टर्की के अलहासा नामक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। शमर में इब्न रसीद भी प्रायः खुदसर था तथा हजाज में शरीफ हुसैन सर्वे सर्वा बन बैठा था। लाल सागर के किनारे यमन में इमाम याहिया ने तथा उसके उत्तर असीर में सैयद मुहम्मद इब्न अली इद्रिस ने अपनी स्वतंत्र रियासतें कायम कर ली थी। इसके साथ ही साथ फारस के खाड़ी में के नज़दीक अदन, बहराइन, कुवैत आदि तटवर्ती क्षेत्र प्रायः ब्रिटिश संरक्षण में आ चुके थे। इस प्रकार तुर्क प्रभाव इस क्षेत्र में नहीं के बराबर था। अतः जब प्रथम महायुद्ध का आरंभ हुआ तो ब्रिटेन ने इब्न सऊद एवं इद्रिस के साथ एक संधि कर ली तथा शरीफ हुसैन के साथ वार्तालाप आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप अरब विद्रोह संभव हो सका। अरब विद्रोह। युद्धकालीन अरब विद्रोह का नेतृत्व शरीफ हुसैन ने किया। वह पैगंबर का वंशज था तथा उसके परिवार के व्यक्तियों को ही मक्का के प्रधान शरीफ का पद दिया जाता था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने 1893 ईस्वी में उसे मक्का से बुलाकर कुस्तुनतुनिया में अतिथि बनाए रखा, परंतु 1908 ईस्वी में तरुण तुर्कों ने उसे मक्का के अमीर के पद पर बैठा दिया। इससे इसने अपनी स्थिति का लाभ उठाया तथा मुस्लिम तीर्थ स्थानों के संरक्षक की हैसियत से काफी प्रतिष्ठा हासिल कर ली। इसके चार पुत्र थे, अली, अब्दुल्ला, फैसल एवं अमीर जैद, तथा इन्होंने अरब विद्रोह में महत्वपूर्ण योग दिया। अब्दुल्ला अल फतात का सदस्य बन गया तथा युद्ध के पूर्व ही उसने फरवरी 1914 ईस्वी में कैरो स्थित ब्रिटिश राजदूत किचनर से अरब आंदोलन के प्रति ब्रिटिश रुख पर वार्तालाप किया, परंतु आरंभ में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। शीघ्र ही प्रथम महायुद्ध का श्री गणेश हुआ तथा इस बार किचनर ने ही युद्ध मंत्री की हैसियत से शरीफ हुसैन के पास एक पत्र भेजा और उसके सहयोग की मांग की। इसके बदले में इसे मान्यता एवं सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया गया। नवंबर 1914 ईस्वी में टर्की युद्ध में जर्मनी की ओर से कूद पड़ा था, अतः ब्रिटेन के लिए अरब सहयोग काफी कीमती तथा आवश्यक था, परंतु शरीफ हुसैन से सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाया। उसने सर्वप्रथम टर्की के जिहाद के नारे को मान्यता देना नामंजूर कर दिया। इसके बाद उसने इराक और सीरिया की गुप्त संस्थाओं से बातचीत की एवं इब्न सऊद और इद्रीस को भी अपनी मंशा से अवगत कराया। इसी बीच अल अहद एवं अल फतात के सदस्यों ने मई 1915 ईस्वी में दमिश्क में अरब विद्रोह की शर्तों का मजमून तैयार किया, जिसे दमिश्क प्रस्ताव कहते हैं। इसके अनुसार एक स्वतंत्र अरब राज्य की मांग रखी गई, जिसमें लाल सागर से फारस की खाड़ी तक एवं हिंद महासागर से ईरान की सरहद तक के क्षेत्र शामिल थे। इसमें ब्रिटिश अधिकृत अदन शामिल नहीं था। ब्रिटेन के साथ सुरक्षात्मक संधि, विशेष वैदेशिक सुविधाओं का अंत एवं ब्रिटेन के विशेष आर्थिक सुविधाओं की शर्तें भी इसमें शामिल थीं। दमिश्क प्रस्ताव के आधार पर ही जुलाई 1915 ईस्वी में शरीफ हुसैन ने कैरो स्थित ब्रिटिश राजदूत सर हेनरी मैकमोहन के साथ वार्तालाप आरंभ किया। हुसैन मैकमोहन वार्तालाप। सर हेनरी मैकमोहन ने जनवरी 1915 ईस्वी में कैरो में ब्रिटिश राजदूत का पद ग्रहण किया। इस समय तक युद्ध जोरों से चल रहा था तथा टर्की ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। ऐसी हालत में अरबों का महत्व काफी बढ़ गया था। शरीफ हुसैन ने जिहाद को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। मैकमोहन ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के आदेश से जून 1915 ईस्वी में एक स्वतंत्र अरब राज्य एवं अरब खिलाफत की स्थापना के ब्रिटिश उद्देश्य की घोषणा की तथा इसका काफी प्रचार किया। जुलाई 1915 ईस्वी में शरीफ ने दमिश्क प्रस्ताव की शर्तों को मान्यता देने के लिए मैकमोहन के पास पत्र लिखा तथा उसके आधार पर ब्रिटिश अरब समझौते की मांग रखी। पहले पत्र का उत्तर निर्णायक नहीं था, अतः हुसैन ने दूसरा पत्र सितंबर में लिखा और निश्चित उत्तर की अपेक्षा की। मैकमोहन ने अब तक परिस्थिति का अध्ययन कर लिया था, अतः 24 अक्टूबर 1915 ईस्वी को उसने दूसरा पत्रोत्तर भेजा तथा अरब ब्रिटिश समझौते के बुनियादी आधार को निश्चित किया। उसने दमिश्क प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र अरब राज्य में मानचित्रों में कतिपय 1915 ईस्वी को उसने दूसरा पत्रोत्तर भेजा तथा अरब ब्रिटिश समझौते के बुनियादी आधार को निश्चित किया। उसने दमिश्क प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र अरब राज्य से मानचित्र में कतिपय संशोधन किया। उसने मर्सिन और अलेक्जेंड्रेटा के जिले एवं सीरिया में दमिश्क, हाम्स, हामा, अलेप्पो के पश्चिम जो हिस्से पड़ते थे उन्हें प्रस्तावित राज्य से पृथक करने की शर्त रखी। इसके साथ ही जिन अरब सरदारों से ब्रिटेन ने संधि संबंध कायम कर रखे थे उन्हें भी अलग करने की शर्त उसने रखी। इन शर्तों के आधार पर ब्रिटेन ने स्वतंत्र अरब राज्य को मान्यता देना एवं पोषण करना स्वीकृत किया। उसने पवित्र तीर्थ स्थानों की सुरक्षा, अरब राज्यों को प्रशासनिक सहायता, ब्रिटिश अधिकारियों एवं सलाहकारों की अरब राज्यों में नियुक्ति तथा इराक में विशेष ब्रिटिश स्वार्थों की रक्षा के लिए अरब ब्रिटिश प्रशासनिक सहयोग पर जोर दिया। इसी आधार पर उसने अरब ब्रिटिश सहयोग पर जोर दिया तथा अरब विद्रोह की मांग की। शरीफ हुसैन ने पुनः नवंबर 1915 ईस्वी में पत्र द्वारा सीरिया के किसी भी भाग को स्वतंत्र अरब राज्य से अलग रखना अस्वीकार किया एवं इराक में भी उसने मैकमोहन की शर्तों का पूर्ण रूप से नहीं माना। इसका पत्रोत्तर मैकमोहन ने दिसंबर में दिया, परंतु इसमें कोई नई बात नहीं थी। शरीफ हुसैन भी अब युद्ध में कूदने के लिए तैयार था तथा उसे ब्रिटिश न्याय का भरोसा था। अतः जनवरी 1916 ईस्वी में पुनः दोनों के बीच पत्राचार हुआ तथा अरब सहयोग का सौदा तय हो गया। वास्तव में दोनों दलों ने कई बातों में अंतिम निश्चय नहीं करके उन्हें भविष्य के ऊपर छोड़ दिया। अतः ब्रिटिश अरब समझौतों की शर्तें वही रही जो मैकमोहन ने अक्टूबर 1915 ईस्वी में शरीफ हुसैन के पास भेजी थी। बाद में शरीफ हुसैन के संशोधनों को ब्रिटेन ने स्वीकृति नहीं दी थी, अतः उन्हीं शर्तों पर 5 जून 1916 ईस्वी को शरीफ हुसैन ने मक्का में अरब विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। अरब सैनिकों ने शीघ्र ही तुर्क सेना से भागना आरंभ कर दिया तथा इस विद्रोह के कारण तुर्कों को युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ा एवं मित्र राष्ट्रों को काफी सहायता प्राप्त हुई। साइकस पाइकट समझौता मार्च 1916 ईस्वी। साइकस पाइकट एग्रीमेंट मार्च 1916। अरब ब्रिटिश वार्तालाप एवं समझौता गुप्त रूप से संपादित हुआ था, अतः ब्रिटेन के अन्य सहयोगियों को इसका पूर्ण ज्ञान नहीं था। वस्तुतः विशाल ऑटोमन साम्राज्य के टुकड़ों पर गिद्ध दृष्टि प्रायः सभी राष्ट्रों की थी तथा वे युद्धकाल में ही क्षेत्रीय भोज की तैयारी में लगे थे। इसके परिणाम स्वरूप मित्र राष्ट्रों की आपस में कई संधियां हुई जिनके अनुसार भावी क्षेत्रीय प्रसार एवं विभाजन का खाका निर्मित हुआ। इसमें दो समझौते ऐसे थे जो कि अरब ब्रिटिश समझौते के विरुद्ध थे। प्रथमतः 1916 ईस्वी में फ्रांस, ब्रिटेन एवं रूस के बीच ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्र के भावी विभाजन के लिए एक संधि हुई। इसकी मुख्य शर्तें ब्रिटिश राजदूत सर मार्क साइकस एवं फ्रेंच राजदूत जॉर्ज पाइकट ने मिलकर तय किया तथा रूस ने बाद में कुस्तुनतुनिया एवं अनातोलिया के प्रांतों को अपने हिस्सों में सम्मिलित करवा लिया। इस तरह इस समझौते का नाम साइकस पाइकट समझौता पड़ा एवं इसकी शर्तें गुप्त रखी गईं। फ्रेंच अथवा ब्रिटिश दूत को अरब समझौते की जानकारी नहीं थी, अतः इसमें उसका कुछ भी ख्याल नहीं रखा गया। इसके अनुसार सीरिया, इराक में मोसुल एवं तुर्की के अनातोलिया पर फ्रांस का दावा मान लिया गया। ब्रिटेन के हिस्से में इराक का क्षेत्र एवं फारस की खाड़ी से लेकर फ्रेंच क्षेत्र तक का इलाका एवं पैलेस्टाइन शामिल था। इस क्षेत्र का इस देशों ने भविष्य में अपने प्रभाव विस्तार के लिए सुरक्षित रख लिया। इस तरह अरब ब्रिटिश समझौते के कुछ ही दिनों के बाद उस समझौते की खाई खुद गई। यह कूटनैतिक अनैतिकता की चरम सीमा थी। यह अरब स्वतंत्रता के लिए विष वृक्ष था एवं उनके प्रति विश्वासघात था। शनह शनह जब इस संधि का पर्दाफाश हुआ एवं नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के पश्चात बोल्शेविक सरकार ने इन संधियों को प्रकट कर दिया, तब शरीफ हुसैन ने पुनः मित्र राष्ट्रों के साथ पत्राचार संबंध कायम किए। परंतु उनकी ओर से ब्रिटिश विदेश सचिव लॉर्ड बालफोर ने फरवरी 1918 ईस्वी में एक पत्र द्वारा उसकी शंकाओं को निर्मूल घोषित कर दिया एवं हुसैन ने पुनः ब्रिटेन की नेक नियति पर विश्वास कर लिया। बालफोर घोषणा 2 नवंबर 1917 बालफोर डिक्लेरेशन नवंबर 2, 1917 ईस्वी की बालफोर घोषणा अरबों के प्रति विश्वासघात की दूसरी कड़ी थी। ब्रिटेन ने साइकस पाइकट समझौते में पैलेस्टाइन का क्षेत्र सीरिया से अलग अपने प्रभाव क्षेत्र में रखा था एवं वहां पर एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय शासन की व्यवस्था का आश्वासन दिया था। पैलेस्टाइन यहूदियों एवं ईसाइयों का पवित्र तीर्थ स्थान था, अतः उसमें रूस और फ्रांस दोनों दिलचस्पी रखते थे। मिस्र के निकट होने से ब्रिटेन का भी वहां अभिन्न स्वार्थ था। इसी समय यहूदियों के बीच राष्ट्रीय आवास की स्थापना के लिए आंदोलन चल रहा था। उसके नेता डॉक्टर वेजमान ने ब्रिटेन को अपने को आविष्कारों से मदद पहुंचाई थी। वास्तव में यहूदी मित्र राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त करके पैलेस्टाइन में अपने लिए एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। फरवरी 1917 ईस्वी में एक यहूदी सम्मेलन ने ब्रिटिश प्रतिनिधि सर मार्क साइकस को यह विश्वास दिलाया कि यहूदियों के पैलेस्टाइन में बसने पर वे वहां ब्रिटिश संरक्षित राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेंगे। अंततः 2 नवंबर 1917 ईस्वी को बालफोर घोषणा हुई। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने पैलेस्टाइन में यहूदियों के लिए राष्ट्रीय आवास की स्थापना के लिए प्रयास करने का निश्चय किया, परंतु इसमें गैर यहूदियों के दीवानी एवं धार्मिक अधिकारों की रक्षा तथा अन्य देशों में यहूदियों की राजनीतिक स्थिति यथावत रहने देने का संकल्प रखा गया। इस घोषणा ने अरबों पर वज्रपात सा कर दिया। शरीफ हुसैन ने पुनः ब्रिटेन के पास प्रतिरोध का पत्र भेजा। ब्रिटिश राजदूत जॉर्ज होगार्थ ने जनवरी 1918 ईस्वी में शरीफ हुसैन से मुलाकात की एवं उसे विश्वास दिलाया कि इस घोषणा से पैलेस्टाइन निवासियों के आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। पुनः अरब विद्रोह के नेता का आंख पर पर्दा डाल दिया गया एवं वे धोखे की खंदक की ओर आंख बंद करके बढ़ते गए। अरब विद्रोह के परिणाम। ऑटोमन साम्राज्य ने जब युद्ध में प्रवेश किया तो उसके 2.5 करोड़ आबादी में अरबों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर थी। अरब विद्रोह ने तुर्क शक्ति को बिल्कुल खोखला कर दिया। जिस समय शरीफ हुसैन ने विद्रोह का आरंभ किया, उस समय एक तुर्क फौज खैरिबे की अधीनता में मदीना की ओर बढ़ रही थी तथा उसके साथ वॉन स्टॉनजिंगन के अधीन एक जर्मन सैन्य मंडल भी था, जिसका उद्देश्य एक सैनिक अड्डा की स्थापना करना था, परंतु विद्रोह ने उसका रास्ता बंद कर दिया। सैनिक दृष्टि से विद्रोह काफी सफल रहा। एक एक कर जिद्दा 16 जून 1916 ईस्वी, मक्का 9 जुलाई, तैफ 21 सितंबर, वजह 25 जनवरी 1917 ईस्वी तथा अकवा 6 जुलाई अरब विद्रोहियों के कब्जे में आ गए। अकवा के पतन के पश्चात ब्रिटिश आक्रमणकारी फौज के साथ फैसल के नेतृत्व में अरब विद्रोहियों ने संपर्क स्थापित किया। उन्होंने यातायात के साधनों को विध्वंस करके तुर्क सेना को अपार क्षति पहुंचाई। इससे ब्रिटिश सेनापति एलएनबी को जेरूसलम पर दिसंबर 1917 ईस्वी में विजय हासिल हुई एवं उसके पश्चात सितंबर 1918 ईस्वी में भी सीरिया पर कब्जा करने में अरब विद्रोहियों का अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ। वास्तव में इन क्षेत्रों में हर तरफ स्थानीय अरबों ने सहयोग दिया एवं अपने त्राताओं का स्वागत किया। तुर्क सेना से भी अरब सैनिक काफी संख्या में विद्रोहियों से मिलते हुए और युद्धबंदियों ने ब्रिटिश सेना को सहयोग दिया। सैनिक दृष्टि से 35,000 से अधिक तुर्क सेना को अरबों ने फंसाए रखा तथा 10,000 के लगभग तुर्कों को बंदी बनाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने तुर्क युद्ध सामग्रियों एवं साधनों को काफी मात्रा हासिल किया। अरब विद्रोह ने जिहाद के नारे को बिल्कुल खोखला साबित कर दिया तथा मुसलमानों पर टर्की के प्रचार के प्रभाव को निर्बल बना दिया। इसका असर सारे अरब क्षेत्र पर पड़ा। 2 नवंबर 1916 ईस्वी को शरीफ हुसैन ने अपने को अरबों का सम्राट घोषित कर दिया, परंतु मित्र राष्ट्रों ने अन्य अरब शासकों को प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर उसे सिर्फ हजाज के बादशाह के रूप में मान्यता दे दी। इस तरह हजाज में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना हुई। तत्पश्चात 20 नवंबर 1916 ईस्वी को कुवैत दरबार में 150 से अधिक अरब सरदारों ने भाग लेकर मित्र राष्ट्रों का पक्ष का समर्थन किया। इस तरह से यह विद्रोह मित्र राष्ट्रों की विजय में काफी सहायक सिद्ध हुई। इन सब के अतिरिक्त युद्धकालीन संधियों के फलस्वरूप अरबों ने स्वतंत्रता की जो किरण देखी, उन्हें युद्ध के पश्चात अधिक दिनों तक अंधेरे में नहीं रखा जा सका तथा अरब देश स्वतंत्र होकर ही रहे। शांति सम्मेलन और अरब प्रदेश। 30 अक्टूबर 1918 ईस्वी को मुद्रो की विराम संधि द्वारा टर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑटोमन साम्राज्य के विभिन्न भागों पर मित्र राष्ट्रों की फौजों का अधिकार हो गया। अरब प्रदेश के दक्षिण में हजाज, नजद, शमर, यमन, अशीर तथा अन्य कई छोटी छोटी रियासतें स्वतंत्र हो गईं। इराक पर ब्रिटिश फौजों का अधिकार हो गया तथा सीरिया को 3 हिस्सों में बांट दिया। पैलेस्टाइन का भाग ब्रिटिश शासन में छोड़ा गया तथा सीरियाई तटवर्ती क्षेत्र ब्रिटिश फौज के अधिकार में रख दिया गया। आंतरिक सीरिया पर अरब शासन कायम हुआ तथा उसका अध्यक्ष फैसल को नियुक्त किया गया। अरबों में जबरदस्त उत्साह था और वे नूतन अर्जित स्वतंत्रता से अतीव प्रसन्न थे, परंतु शीघ्र ही उसकी स्वतंत्रता विषाद की ज्वाला में दग्ध हो गई। 1919 ईस्वी के आरंभ में पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ। अब फ्रेंच ब्रिटिश समझौते की विभिन्नता स्पष्ट हो गई। नवंबर 1918 ईस्वी में फैसल ने फ्रांस की यात्रा की तथा दिसंबर में लंदन गया। यहीं पर उसे स्थिति की विषमता का प्रबल आभास हुआ और उसे गुप्त संधियों का पता चला। फ्रांस सीरिया को हस्तगत करने के लिए दृढ़ संकल्प था तथा फैसल को मान्यता देने के विरुद्ध था। उधर यहूदियों के नेता पैलेस्टाइन में यहूदी राज्य की तैयारियां कर रहे थे। फैसल को अपनी सारी योजनाएं ध्वस्त होती मालूम हुई, फिर भी उसने धैर्य से काम लिया। ब्रिटिश दबाव के कारण उसने यहूदियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, किंतु उसने अरब स्वतंत्रता की शर्त को उसमें जोड़ दिया। शांति सम्मेलन जनवरी 1919 ईस्वी में आरंभ हुआ तथा फैसल हजाज के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुआ। फरवरी में उसने अरबों की मांगों को शांति सम्मेलन के सम्मुख रखा तथा राष्ट्रपति विल्सन के आत्मनिर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन के सिद्धांत के आधार पर अरब स्वतंत्रता की मांग की एवं अरब प्रदेश में जनमत संग्रह पर जोर दिया। अंत में इटली, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं फ्रांस के प्रतिनिधियों का संयुक्त मंडल अरब देशों में भेजना तय हुआ और फैसल फरवरी में दमिश्क लौट आया। सीरियाई प्रतिनिधि सभा एवं उनकी मांगे और जांच समिति की रिपोर्ट। इस बीच फरवरी 1919 ईस्वी में अल-फतात ने एक राजनीतिक दल इस्तिकलाल का रूप धारण कर लिया था। शीघ्र ही एक अखिल सीरियाई प्रतिनिधि सभा के लिए आम निर्वाचन हुए तथा 2 जुलाई को इन प्रतिनिधियों की बैठक दमिश्क में हुई। इस सभा ने कई प्रस्ताव पास किए। इनके अनुसार इन्होंने पहला सीरिया एवं पैलेस्टाइन पर फैसल का राज्य, दूसरा इराक की आज़ादी, तीसरा साइकस पाइकट संधि अथवा बालफोर घोषणा और यहूदी राज्य की योजनाओं का अंत, चौथा बाह्य राजनीतिक प्रभुत्व की अस्वीकृति एवं ब्रिटिश अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सहायता की स्वीकृति किंतु फ्रांसीसी सहायता का विरोध आदि 4 प्रमुख मांगों पर जोर दिया। दूसरी तरफ जांच मंडल में सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों ने ही अरब प्रदेशों का दौरा किया तथा अन्य प्रतिनिधियों ने इसमें भाग नहीं लिया। इसमें दल के 2 प्रमुख सदस्य डॉक्टर हेनरी किंग एवं चार्ल्स क्रेन थे। इनके नाम पर यह मंडल किंग क्रेन कमीशन कहलाया। इन्होंने 28 अगस्त 1919 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट पेश की तथा इसमें सीरिया, पैलेस्टाइन एवं इराक में एक सीमित अवधि के लिए मैंडेट का प्रस्ताव रखा। इन्होंने सीरिया की एकता पर जोर दिया एवं वहां पर अमीर फैसल को सम्राट नियुक्त करने की सलाह दी। इराक में शासक की नियुक्ति के लिए उन्होंने जनमत संग्रह पर जोर दिया। सीरिया में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मैंडेट को प्रथम स्थान तथा ब्रिटेन द्वारा मैंडेट को द्वितीय स्थान दिया तथा इराक में ब्रिटिश मैंडेट स्थापित करने की सलाह दी। पैलेस्टाइन के मामले में उन्होंने यहूदी राज्य स्थापित करने की योजना का विरोध किया एवं आने वाले यहूदियों की संख्या में कटौती करने पर जोर दिया। इस प्रकार यह मसविदा राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित एवं यथार्थवादी था, परंतु फ्रांस तथा ब्रिटेन ने अपनी स्वार्थांधता के वशीभूत होकर इस मसविदे को रद्दी की टोकरी में डाल दिया तथा अपने स्वार्थ सिद्धि की योजनाओं को कार्यान्वित किया। फ्रांस तथा ब्रिटेन में अरब क्षेत्रों के बंटवारे के लिए इसी बीच रस्साकसी चल रही थी तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज एवं फ्रेंच प्रधानमंत्री क्लीमेंजो में कई वार्तालाप हो चुके थे। फ्रांस अपनी मांगों पर अडिग था। अगस्त 1919 ईस्वी में लॉयड जॉर्ज ने फैसल को पुनः आमंत्रित किया तथा फ्रांस से उसे सीधा वार्तालाप करने के लिए कहा। अंततः 27 नवंबर 1919 ईस्वी को फैसल तथा क्लीमेंजो के बीच समझौता, जिसके अनुसार सीरिया के तटवर्ती क्षेत्रों पर ब्रिटिश फौजों का स्थान फ्रेंच फौजों को मिलना तय हुआ तथा पूर्वी सीरिया में अरब शासन कायम रहा, परंतु अब यह फ्रांस से ही सहायता की याचना करने को बाध्य हो गया। यह समझौता सामयिक था तथा अंतिम समझौता शांति सम्मेलन द्वारा होना निश्चित हुआ। फैसल ने मित्र राष्ट्रों के दबाव में आकर संघर्ष को रोकने के लिए ही समझौता किया था। वह जनवरी 1920 ईस्वी में सीरिया लौट गया, परंतु सारे देश में उसके विरुद्ध क्रोध का तूफान छाया हुआ था। 8 मार्च 1920 ईस्वी की अखिल सीरियाई प्रतिनिधि सभा ने सीरिया तथा पैलेस्टाइन की स्वतंत्रता घोषित कर दी तथा फैसल को सम्राट नियुक्त किया। इराक में भी एक आम सभा ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी तथा अमीर अब्दुल्ला को सम्राट घोषित कर दिया। परंतु फ्रेंच फौजों ने तटवर्ती क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया था तथा इराक और पैलेस्टाइन में ब्रिटिश फौज वर्तमान थी। फ्रांस और ब्रिटेन ने अरब प्रतिनिधियों के फैसले को मान्यता नहीं दी। इसी समय राष्ट्रसंघ का संगठन हुआ तथा उसकी 22वीं धारा के अनुसार मैंडेट प्रथा की व्यवस्था की गई। इसके मुताबिक पराजित देशों के उपनिवेशों एवं अधीनस्थ क्षेत्रों पर एक राजनीतिक संरक्षण कायम करने की व्यवस्था की गई, जिसमें कि उन्हें स्वशासन की शिक्षा प्राप्त हो। इसके पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रसंघ ने एक अस्थायी मैंडेट कमीशन का भी संगठन किया। अंत में अरब राज्यों में मैंडेट कायम रखने का निश्चय किया गया और इसी हेतु मित्र राष्ट्रों ने एक सुप्रीम काउंसिल का आयोजन कर उसमें फैसल को आमंत्रित किया। सुप्रीम काउंसिल की बैठक सैन रेमो में 25 अप्रैल 1920 ईस्वी को हुई। इसके अनुसार भूमध्य सागर से फारस तक के अरब क्षेत्र को संरक्षित शासन में रखना तय हुआ। सीरिया के 3 भाग कर दिए गए। लेबनान तथा पैलेस्टाइन को सीरिया से पृथक कर दिया गया। सीरिया तथा लेबनान फ्रांस के अधीन रख दिया गया तथा इराक एवं पैलेस्टाइन ब्रिटेन को प्राप्त हुए। पैलेस्टाइन में बालफोर घोषणा को कार्यान्वित करने का भार भी ब्रिटेन को विशिष्ट रूप से दिया गया। मैंडेट के सिद्धांत के अनुसार इन प्रदेशों को स्वतंत्रता के योग्य बनने तथा वैदेशिक संरक्षण में रहना था, परंतु वस्तुतः मैंडेट प्रथा नए प्रकार का साम्राज्यवाद था तथा इसने अरबों को स्वप्नों पर पानी फेर दिया। उनकी वर्षों की चेष्टा धूल में मिल गई तथा फ्रेंच लोगों पर यत्र तत्र आक्रमण होने लगे। 14 जुलाई 1920 ईस्वी को फैसल को फ्रेंच अधिकारियों ने एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने उसके शासन के विरुद्ध कई दोषारोपण किए तथा कई मांगे रखी। इनके द्वारा फ्रांस ने अलेप्पो, होम्स, हामा आदि शहरों पर फ्रेंच आधिपत्य, अरब सेना की संख्या में कटौती, फ्रेंच मुद्रा को मान्यता, फ्रेंच मैंडेट की स्वीकृति एवं फ्रेंच विरोधी के लिए फैसल ने एवं फ्रेंच विरोधी व्यक्ति को दंड देने की मांग की। वास्तव में फ्रांस सारे सीरिया पर कब्जा करने को तत्पर था। इसे रोकने के लिए फैसल ने सभी मांगों को मान लिया, परंतु फिर भी फ्रांसीसी सेना ने बढ़कर दमिश्क पर कब्जा कर लिया तथा 22 जुलाई को फैसल को देश छोड़ने की आज्ञा प्रसारित की। अंत में सारे सीरिया पर फ्रेंच कब्जा हो गया तथा देश को नई जंजीरों में जकड़ दिया गया। जिस आदर्शों के लिए अरबों ने युद्ध में भाग लिया था धूल धूसरित हो गए तथा ब्रिटेन के विश्वासघात की वेदी पर बलि हो गए। सीरिया में फ्रेंच आधिपत्य, इराक में ब्रिटिश कब्जा एवं पैलेस्टाइन में यहूदी बार के कारण अरबों की तपस्या निष्फल हो गई तथा 1920 ईस्वी का साल अरबों के लिए प्रलय का साल गिना जाने लगा। प्रायः सभी क्षेत्रों में अरबों ने पुनः युद्ध भेरी बजाई तथा खून की नदियां बहाई, परंतु फिर भी उन्हें नई जंजीरों से मुक्ति मिलने में कई वर्ष लग गए। इस प्रकार अरबों ने एक जंजीर तोड़ी, परंतु पुनः नई जंजीर में जकड़ लिए गए तथा महायुद्ध के पश्चात भी अरब एकता एवं स्वतंत्रता मृग मारिच का ही सिद्ध हुई। हाशिमी वंशधरों का पुनर्प्रतिष्ठापन। युद्धोत्तर शांति व्यवस्था ने अरबों की आशाओं पर पानी फेरने के साथ साथ शरीफ हुसैन का स्वप्न भंग कर दिया। पैगंबर के वंशज शरीफ हुसैन ने जिस उद्देश्य से विद्रोह का आह्वान किया था वह निष्फल हो गया एवं जर्जर तुर्क साम्राज्य की स्थापना पर अब अरब प्रबल पाश्चात्य सिकंजे में जकड़ दिए गए। युद्ध काल में ही शरीफ हुसैन ने अल्प समय के लिए अरब सम्राट की उपाधि धारण की थी। अरबों में हजाज ने वृद्ध शरीफ हुसैन सीरिया में फैसल एवं इराक में अब्दुल्ला को शासक के रूप में प्रतिष्ठित करने की योजना बनाई थी, परंतु अब वे सभी योजनाएं धूल धूसरित हो गई। फैसल को सीरिया से बहिष्कृत कर दिया गया एवं इराक पर ब्रिटेन ने मैंडेट हासिल कर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस परिस्थिति के लिए अरबों के सम्मुख मुख्य दोषी ब्रिटेन था। ब्रिटिश दूत मैकमोहन ने ही हुसैन से अरब स्वातंत्र का वादा किया था, परंतु अब ब्रिटेन ने वचन भंग कर नई व्यवस्था की स्थापना में योगदान दिया। इससे अरबों में ब्रिटेन के प्रति असंतोष छा गया। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन ने दिसंबर 1920 ईस्वी में एक मध्य पूर्व विभाग की स्थापना की तथा इसे तत्कालीन उपनिवेश मंत्री विंस्टन चर्चिल को सुपुर्द कर दिया। चर्चिल ने 21 मार्च 1921 ईस्वी को कैरो में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मध्य पूर्व के प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी एवं लॉरेंस जद्रडेविल क्लेटन आदि व्यक्तियों ने भाग लिया। कैरो सम्मेलन ने फैसल को इराक का तख्त देना निश्चित किया एवं उसके अग्रज अब्दुल्ला के लिए इराक के निकट में जॉर्डन नदी के पूर्व का भाग पैलेस्टाइन मैंडेट से पृथक एक नए राज्य ट्रांस जॉर्डन की स्थापना का निश्चय किया। इराक में फैसल के राज्यारोहण पर मैंडेट की स्थिति पर एक नवीन संधि संबंध निर्धारित करने का भी निश्चय किया, परंतु यह व्यवस्था अरबों की पूर्व निश्चित व्यवस्था के प्रतिकूल थी। उन्होंने इराक को अब्दुल्ला के लिए सुरक्षित रखा था तथा फैसल ने दिसंबर 1920 ईस्वी में ही इराक संबंधी ब्रिटिश प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके अतिरिक्त अब्दुल्ला सीरिया पर आक्रमण करने के लिए एक अरब फौज के संगठन में व्यस्त था, परंतु अब्दुल्ला ने फैसल के इराक के तख्त पर प्रतिष्ठित होने के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया एवं फैसल ने भी कैरो सम्मेलन के पश्चात इस प्रस्ताव को मान लिया। तत्पश्चात चर्चिल ने जेरूसलम में अब्दुल्ला के साथ वार्तालाप कर ट्रांस जॉर्डन पर शासन करने के लिए उसकी स्वीकृति ले ली, साथ ही उसे भविष्य में सीरिया के तख्त की आशा दी। इस तरह नूतन व्यवस्था को मान्यता प्राप्त हो गई और 11 जुलाई 1921 ईस्वी को फैसल इराक का बादशाह घोषित कर दिया गया। अब्दुल्ला प्रथम अप्रैल 1921 ईस्वी को ही ट्रांस जॉर्डन का शासनभार ग्रहण कर चुका था। इस प्रकार 1920 ईस्वी में ब्रिटेन ने हाशिम वंशियों के प्रति कृतज्ञता का ऋण आंशिक रूप से चुका दिया एवं अरब प्रदेश का युद्धोत्तर नक्शा प्रायः पूर्ण हो गया। अरब स्वतंत्र संग्राम की मंजिल अधूरी रह गई और बाद का अरब इतिहास घोर संघर्ष की कहानी है। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।